आकाश के कथन के तुरंत बाद अरमान का चेहरा वीर रायचंद का नाम सुनते ही कड़ा हो गया। उसने दोनों हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं। उसके शरीर की नसें इस तरह उभर आईं मानो नीले रंग की नदियां बह रही हों। सारी नीली नसें साफ दिख रही थीं। अरमान का आभा उस समय बेहद खतरनाक लग रहा था। आहान और ध्रुव एक क्षण के लिए उसे देखकर डर गए। अरमान का रूप बेहद भयानक लग रहा था। तत्पश्चात अरमान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वीर रायचंद के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। ये कहकर अरमान वहां से चला गया, क्योंकि उस रात 2 बजे के बाद उसे विदेशी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करनी थी। अरमान जानता था कि यदि उसने ये मीटिंग अटेंड नहीं की तो वीर रायचंद इस अवसर का पूरा फायदा उठा सकता था। परंतु अरमान सिंघानिया ने निश्चय कर लिया था कि वो वीर रायचंद को पूरी तरह बर्बाद कर देगा और उसे कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलने देगा। डेविल किंग बनकर अरमान वीर रायचंद के अवैध काम, अवैध धंधे खत्म कर रहा था। वहीं अरमान सिंघानिया बनकर वो वीर रायचंद के वैध काम, वैध धंधों को बंद कर रहा था। धीरे धीरे उसने वीर रायचंद को बर्बाद करना शुरू कर दिया था। परंतु अरमान सिंघानिया को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वीर रायचंद केवल एक मोहरा था, असली दुश्मन से उसका सामना अभी बाकी था। वो मीटिंग के लिए सिंघानिया मेंशन जाने के लिए निकल गया था। ध्रुव ने आहान से कहा, तो क्या सोच रहा है, क्या तुझे सिंघानिया मेंशन नहीं जाना है? अरमान भाई वहां पहुंच चुके होंगे। आहान थोड़ा कांपते हुए बोला, यार भाई का चेहरा देखा है, कितना खतरनाक लग रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं वापस मेंशन जाऊं। एक काम कर, आकाश भाई से कह दे आज रात वो मुझे अपने विला में सुला दे। आहान का बेचारा सा मुंह देखकर ध्रुव ने उसके सर पर थप्पड़ मारते हुए कहा, सिंघानिया मेंशन में रहने का तू तो बहाना करता है, सारा दिन आकाश भाई के विला में ही पड़ा रहता है। आहान बहाना बनाते हुए बोला, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तू भी तो ज्यादातर समय आकाश भाई के विला में रहता है ना, और वो विला कितना प्यारा और खूबसूरत है। आस्था भाभी को भी आकाश भाई का विला दिखाने चलेंगे। आंखें फैलाकर ध्रुव ने कहा, इसके बारे में सोचना भी मत। तुमने नहीं देखा अरमान भाई ने उस सेल्स गर्ल से क्या हालत कर दी थी? अरमान भाई से जुड़ी किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने का उसकी ओर देखने का हक किसी का नहीं है, वो हक सिर्फ अरमान भाई का है। अगर तुम्हें वाकई आग से खेलने का शौक है तो तुम आस्था भाभी को आकाश भाई के विला में लेकर जा सकते हो। ध्रुव के शब्दों से आहान का गला सूखने लगा, वो डरकर बड़बड़ाने लगा, यार मैं अकेला थोड़ी ना जाऊंगा, आस्था भाभी लेकर तुम भी मेरे साथ चलना, और वैसे भी भाई इतना खड़ूस है, मैं नहीं चाहता कि आस्था जैसी प्यारी भाभी हमारे भाई को छोड़कर जाएं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम भाभी का अच्छे से ख्याल रखें। वो लोग आपस में बहस करते हुए आकाश के विला की ओर चल दिए, क्योंकि ध्रुव और सुमित का विला वहां से पास में ही था। परंतु आकाश के विला में वे चारों अधिक सहज महसूस करते थे, इसीलिए वे ज्यादातर आकाश के साथ ही रहते थे। अरमान के साथ एक विला में रहने में उन्हें थोड़ा डर भी लगता था, परंतु दादाजी के कारण वे वहां आते जाते रहते थे। परंतु अब आस्था भी वहां थी तो उन्हें वहां आने जाने का और कारण मिल गया था, वरना सिंघानिया मेंशन उन्हें भूत बंगला लगता था। वहीं दूसरी ओर अरमान जैसे ही सिंघानिया मेंशन लौटा तो उसने देखा कि घड़ी में 1:30 बज रहे थे, उसके पास आधा घंटा था, और उसने सोचा कि उस आधे घंटे में उसे थोड़ा फ्रेश हो जाना चाहिए, उसके बाद उसे अपनी मीटिंग अटेंड करनी थी। मीटिंग की सारी तैयारी देव पहले ही कर चुका था, उसे बस अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स विदेशी क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करनी थी, इसीलिए अरमान जल्दी ही अपने कमरे में चला गया और कमरे में पहुंचते ही देखा कि पूरे कमरे की लाइटें जल रही थीं। कमरे में इतनी तेज रोशनी देखकर अरमान के माथे पर बल पड़ गए। अरमान को अपने कमरे में धीमी रोशनी पसंद थी, ज्यादा रोशनी से वो बहुत परेशान हो जाता था। परंतु जैसे ही उसकी नजर आस्था पर पड़ी तो वो चौंक गया। आस्था जो दवाइयां खाने के बाद इस गुलाबी सूट में सो गई थी, बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। तभी अरमान की नजर आस्था के बगल में रखे ढके हुए खाने पर गई। अरमान चौंक गया, क्योंकि खाने से साफ पता चल रहा था कि आस्था ने कुछ भी नहीं खाया है। अरमान तिरछा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या लगा तुम इस तरह से खाना पीना छोड़ दोगी तो अरमान सिंघानिया की कैद से आसानी से रिहा हो जाओगी? ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया। अरमान सिंघानिया तुम्हें किसी भी कीमत पर इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। सबसे पहले मैं पता लगाऊंगा कि तुम्हारा मेरी जिंदगी में आने का क्या मकसद है। भले ही प्रियंका से तुम्हारे बारे में ज्यादा जानकारी ना मिली हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इतनी आसानी से तुम शादी के लिए नहीं मान सकती थी। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अभी भी मुझे मिसिंग लग रहा है, लेकिन मैं सारा सच पता लगाकर रहूंगा। उसके बाद मैं साफत कल मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे अरमान सिंघानिया के कहर से बचती हो। अरमान आस्था की शक्ल को देखते हुए ये सब सोच रहा था। वहीं आस्था गहरी नींद में थी, उसे अपने ऊपर किसी की तेज निगाह का एहसास हो रहा था। जब भी किसी लड़की को कोई घूरता है उसे पता चल जाता है। आस्था को भी ऐसा ही लग रहा था। उसने दवाई खाकर सोई थी इसलिए वो गहरी नींद में थी, इसीलिए वो अपनी आंखें खोलकर नहीं देख पा रही थी। अरमान एक नजर आस्था की ओर देखता हुआ बाथरूम में चला गया और नहा कर आने के बाद उसने कैजुअल कपड़े पहने। उसने लोअर और हल्की टी शर्ट पहनी। उसके बाद उसने सोचा कि अब आस्था को उठाकर खाना खिलाए, क्योंकि यदि वो इस तरह से खाली पेट दवाई लेकर सो रही होगी तो इससे उसकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता था। अरमान सिंघानिया उसे अभी किसी भी कीमत पर बीमार नहीं देखना चाहता था, क्योंकि अभी तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो अरमान सिंघानिया आस्था से करवाना चाहता था। तभी अरमान ने अपना गला साफ किया ताकि आस्था उसकी आवाज़ सुनकर उठ बैठे, परंतु आस्था तो आस्था थी, वो गहरी नींद में सोई हुई थी। अरमान ने थोड़ा आगे जाकर आस्था के बगल में रखा हुआ गिलास नीचे गिरा दिया। उसकी आवाज बहुत तेज हुई, परंतु आस्था की नींद नहीं खुली। अब अरमान चिढ़ गया था। वो सोचने लगा, लगता है कि उस दिन की तरह एक बार फिर मुझे इस लड़की को बंदूक चलाकर ही उठाना होगा। ये सोचते हुए अरमान ने फिर से अपने हाथों में बंदूक थाम ली और एक पल के लिए उसने अपनी बंदूक का निशाना आस्था पर टिका दिया। वहीं आस्था गहरी नींद में थी, परंतु जैसे ही उसने थोड़ी सी आंख खोली और सबसे पहले बंदूक देखी तो उसकी आंखें जो थोड़ी सी खुली हुई थी बंदूक देखते ही पूरी तरह खुल गई। अरमान ने अभी तक बंदूक नहीं चलाई थी, परंतु निशाना उसकी ओर था। आस्था जल्दी से उठकर बैठ गई और उसने तुरंत तकिया अपने हाथ में लेकर अपने सामने रख लिया और घबरा कर कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप हमारी जान लेना चाहते हैं? क्यों आप हमें मारना चाहते हैं? आस्था तकिए के पीछे से ही अपना सर छुपाकर बोल रही थी। अरमान आस्था की इस हरकत को देखकर मुस्कुराने लगा और मन में बोला, चलो अच्छा है ये पहले ही उठ गई और आज मुझे बंदूक नहीं चलानी पड़ी, वरना खामखा दादाजी की नींद खराब हो जाती। अरमान ने आस्था की ओर देखते हुए और थोड़े सख्त शब्दों में बोला, ये खाना ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? तुमने ये खाना क्यों नहीं खाया? क्या साबित करना चाहती हो तुम खाना ना खाकर? अरमान के थोड़े तेज आवाज में पूछने पर आस्था के होंठ डर से फड़फड़ाने लगे और वो बोली, मैं वो। आस्था की मैं सुनकर अरमान चिढ़ते हुए बोला, अब बकरी की तरह मैं करना बंद करो और ये बताओ ये खाना क्यों नहीं खाया तुमने? अभी और इसी वक्त ये सारा खाना खाओ। अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मजबूरी में मुझे अपनी गोली तुम्हें खिलानी होगी। अरमान के कहने पर आस्था ने जल्दी से तकिया अपने सामने से फेंका। फटाफट से दौड़कर उसने थाली उठा ली और जल्दी जल्दी से खाना शुरू कर दिया। अरमान उसे चौंक कर देख रहा था क्योंकि आस्था बेढंगे तरीके से खाना खा रही थी।
आस्था जबरदस्ती मुंह में खाना ठूस रही थी और अरमान की ओर देख रही थी। वो तो उसकी बंदूक की ओर देख रही थी। जल्दी खाना खाने के चक्कर में आस्था को गले में फंस गया था, परंतु वो फटाफट से खाना खत्म करना चाहती थी। आस्था ने एक साथ कितना सारा खाना मुंह में भर लिया था कि उसे मुंह चलाने में भी परेशानी होने लगी। तभी अरमान आगे आ गया था और फटाफट से टिश्यू पेपर उसकी ओर बढ़ाते हुए एक गिलास पानी दिया। जल्दी ही आस्था ने अपने मुंह का खाना उस टिश्यू पेपर में निकाल दिया था। ये देखकर अरमान ने अपना बुरा मुंह बना लिया था। अरमान को साफ सफाई बहुत पसंद थी और आस्था की ये हरकत उसे अंदर तक परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, इस आफत को क्या ढंग से खाना खाना भी नहीं आता है? वो थोड़ी तेज आवाज में उसकी ओर देखकर बोला, ये कितनी गंदगी तुमने फैला रखी है, क्या तुमसे ढंग से खाना भी नहीं खाना आता है? आस्था हिचकियां लेते हुए बड़बड़ाने लगी, अब इसमें हमारा क्या कसूर है? एक तो आप थानेदार की तरह बंदूक लेकर हमारे सर पर सवार हो गए और उसके बाद भी आप हमें ढंग से खाना खाने के लिए कह रहे हैं। आस्था के पानी का घूंट पीते हुए ये कहने पर अरमान ने अपने सर पर हाथ मार लिया था और सोचने लगा, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता है, एक नंबर की आफत है। इस आफत जितना मैं इससे दूर रहूंगा उतना ही मेरे लिए बेहतर होगा। मुझे इस लड़की के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और जाकर अपनी मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। ये सोचते हुए अरमान आस्था की ओर देखते हुए बोला, फटाफट ये खाने की थाली यहाँ से बाहर भिजवा देना, मैं अपने कमरे में किसी तरह की कोई गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, समझे तुम? ये कहकर वो अपना लैपटॉप उठाकर वहाँ से जाने लगा।